तारीख 31 दिसंबर दिन मंगलवार, कार्यक्रम दिनभर के साथ मैं हूँ मानसी दाश। केरल विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, नाराज हुए कानून मंत्री।
इट इज ओनली द पार्लियामेंट विच हैज गॉट द पावर टू पास एनी लॉ विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप, नॉट एनी असेंबली इंक्लूडिंग केरला असेंबली।
पिछले 3 सालों से कई दलित छात्रों को नहीं मिली अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति।
पढ़ाई स्कॉलरशिप के आज से ही करती हूँ, मेरे घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और अगर स्कॉलरशिप ना आए तो मैं शायद आगे को पढ़ने की सोच भी नहीं सकती हूँ।
वर्षांत कार्यक्रमों में जानिए फिल्मों की दुनिया में इस साल क्या हुए चर्चे।
जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार, कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो?
Kangana, I don't think it's fair to say that.
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। यह कानून संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों के विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों के बीच चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेने का कदम उठाना चाहिए। भारत प्रशासित कश्मीर में 31 दिसंबर आधी रात यानी कि नए साल की शुरुआत से टेक्स्ट मैसेज भेजने की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई है। 5 अगस्त को धारा 370 हटाने के बाद से भारत प्रशासित कश्मीर में संचार सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कश्मीर में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवाओं को जल्द ही शुरू किया जाएगा। हजारों इराकी लड़ाकों ने बगदाद में अमरीकी दूतावास पर हमला बोल दिया। ये हमला अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में किया गया। अमरीकी हमले में ईरान समर्थित 25 इराकी लड़ाके मारे गए थे। दूतावास पर हुए हमले में लड़ाकों ने एक गार्ड टावर को आग लगा दी। वहीं भीड़ के दूतावास परिसर में घुसने की भी खबरें हैं। भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हमले के वक्त राजदूत दूतावास में मौजूद नहीं थे। लड़ाकों का नेतृत्व कर रहे कैस अल खजाली ने कहा कि इराक की मिट्टी पर अमरीका की मौजूदगी देश के लिए सही नहीं है। ये साबित हुआ है कि ये दूतावास इराक के खिलाफ साजिश रचने, जासूसी करने और इराक को नुकसान पहुंचाने में शामिल है। ये वो जगह है जो देशद्रोहियों को समर्थन देती है। ये दूतावास अमरीकी जोकरों का समर्थन करता है। इसी जगह पर इराक को नुकसान पहुंचाने वाले ऑपरेशन चलते हैं और यहीं पर देश की संप्रभुता का उल्लंघन होता है। ये थे लड़ाकों का नेतृत्व कर रहे कैस अल खजाली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापानी कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोन जमानत की शर्तें तोड़कर देश से बाहर चले गए हैं। उन पर वित्तीय दुराचार का मामला चल रहा था। कार्लोस गोन फिलहाल लेबनान में हैं, उनके पास लेबनान की नागरिकता भी है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा है कि वो अन्याय और राजनीतिक उत्पीड़न से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कार्लोस गोन के वकील ने उनके जापान छोड़ने पर हैरानी जताई है और कहा है कि उनकी लीगल टीम के पास अब भी उनके 3 पासपोर्ट हैं। मैं कार्लोस गोन के जापान से जाने पर बहुत हैरान हूँ। ये अचानक ही हो गया। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है क्योंकि ऐसा करना जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये एक अलग मसला है। ये थे कार्लोस गोन के वकील के शब्द। एंगोला में एक अदालत ने इजाबेल दोश सेंटूश की संपत्तियां और बैंक खाते जब्त करने का आदेश दिया है। इजाबेल पूर्व राष्ट्रपति की बेटी हैं और अक्सर उन्हें अफ्रीका की सबसे अमीर महिला कहा जाता है। उन पर देश की अरबों डॉलर की संपत्ति की चोरी में शामिल होने का आरोप है। हालांकि इजाबेल लगातार इन आरोपों से इनकार करती रही हैं। आइवरी तट के एक पूर्व नेता शार्ल ब्ले गुडे को उनकी अनुपस्थिति में हत्या, बलात्कार और यातना के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। शार्ल ब्ले गुडे मंत्री रह चुके हैं और एक चरमपंथी समूह का नेतृत्व कर चुके हैं जो पूर्व राष्ट्रपति लॉरांग बैगबो का समर्थन करता था। साल 2010 में जब आइवरी तट गृह युद्ध की कगार पर था, तब ये विवाद हुआ था कि शार्ल ब्ले गुडे ने हजारों युवकों को लड़ाई के लिए भर्ती किया और उन्हें हथियार दिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा दिन भर, जो कि साल 2019 की आखिरी शाम का आखिरी कार्यक्रम भी है। इस सभा को सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। बीते कई दिनों से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश उबाल पर है। साल के आखिरी दिन यानी आज केरल की विधानसभा ने इसे रद्द करने की मांग करते हुए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पेश किया था, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। सुनिए बंगलुरु से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केंद्र के एक कानून के किसी विधानसभा ने कड़ा विरोध किया हो, और ऐसा कभी केरला के इतिहास में नहीं हुआ है कि सत्तारूढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन दोनों ने मिलकर किसी भी एक प्रस्ताव को पूर्ण रूप से पास किया हो। लेकिन आज केरला विधानसभा ने एक तरह से इतिहास रच दिया। सिर्फ बीजेपी के एकलौते विधायक ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव का विरोध किया। पहले सुनिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने क्या कहा।
पौरत्व भेदगति नियमम वन्निट्टुंड।
ये नया नागरिकता कानून एक कार्य सूची का हिस्सा है, और इस विषय की गंभीरता ये है कि अगर हम इसका विरोध पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तो इस तरह के कार्य सूची को और मजबूती मिल जाएगी। ये थे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के शब्द। केरला विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन रमेश चेन्नीताला ने कहा, भारत का संविधान और धर्मनिरपेक्षता आज सत्र में है, जिसका विरोध किए जाना बेहद जरूरी है।
Everybody knows that this is going to affect the people of India, the secular people of India.
सबको पता है कि इसका असर भारतीय गणतंत्र के सभी लोगों पर पड़ने वाला है। हम भारतीय संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। इस तरह के फैसले से भारतीय संविधान ये कमजोर होगा। नागरिकता देने का आधार कभी भी धर्म नहीं हो सकता। ये थे विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीताला के शब्द। लेकिन केरला विधानसभा में नागरिकता कानून से संबंधित प्रस्ताव होने के तुरंत बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा,
आई एम ओपनिंग द सेवंथ शेड्यूल बिफोर यू द यूनियन लिस्ट।
नागरिकता यूनियन लिस्ट में शामिल है, ये यूनियन लिस्ट में 17वें स्थान पर है। इस पर किसी भी तरह का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। किसी राज्य के विधानसभा को इस पर कानून बनाने या संशोधन का अधिकार नहीं है। केरला विधानसभा को भी नहीं। ये थे रविशंकर प्रसाद के शब्द। लेकिन इस प्रस्ताव को पारित करके केरला विधानसभा ये कह रही है कि ना सिर्फ सत्तारूढ़ पक्ष बल्कि सारा विपक्ष भी केंद्र के इस कानून के विरोध में है। अभी तक 11 राज्य सरकारों ने इस कानून का विरोध किया है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
लेकिन इस विवाद ने एक प्रश्न को जन्म दे दिया है कि क्या किसी विधानसभा के पास इस तरह का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, और नहीं तो फिर विरोध जताने का उनके पास तरीका क्या है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने संपर्क किया हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंचल सिंह से। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
संविधान के प्रोविजंस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इसका लीगल कोई बेसिस नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, ना ही इसका कोई लीगल इफेक्ट है, इसका कंसीक्वेंस है। ये इसका पॉलिटिकल इफेक्ट हो सकता है, वो है, सर्टेनली है, पर इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। सिंस सिटीजनशिप संविधान की 7वीं सूची के लिस्ट 1 में आता है, ये आइटम नंबर है 17, तो राज्य सरकारों को या विधानसभाओं को कोई पावर नहीं है इस पे कानून बनाने का।
लेकिन केरल की विधानसभा ने इस पर कानून नहीं बनाया है, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया है कि हम इसे नहीं मानेंगे।
मुझे लगता है कि राज्य विधानसभा, वो केरल हो या इस तरह की बातें वहां से भी आई हैं कि हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, कई सारे राज्यों में हैं, तो इस तरह का कोई ऑप्शन राज्य के पास तब तक नहीं है जब तक कि ये कानून अवैध करार नहीं दे दिया जाता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि हमारा जो संविधान का स्ट्रक्चर है उसमें 2 विधायिकाएं हैं, एक तो पार्लियामेंट है और एक विधानसभा है, जो कि एक ही सेटअप पीपल पे रूल करते हैं। तो हर व्यक्ति 2 तरह के कानून से गवर्न होता है, दोनों का अधिकार विभाजन है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो सिंगल है, उसमें कंट्रोल सेंटर का होता है, और बहुत क्लियर लिखा हुआ है संविधान में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, कोई कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, पावर अगर राज्य को है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बहुत क्लियर है। इस रिजोल्यूशन में जो केरला विधानसभा ने पास किया है इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल एक कंसीक्वेंस हो सकता है, एक ओपिनियन बेस्ड, और अदरवाइज इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट नहीं होगा।
जी सर, यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि कानूनी कदम के तौर पर केरल विधानसभा को क्या करना चाहिए था इसकी बजाय?
विधानसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती मेरे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहाँ विधानसभा को कोई पावर है या अधिकार है कि विधानसभा पार्लियामेंट के बनाए कानून से अगर असहमत है तो वो कुछ कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कोई प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है।
यानी सिवाय विरोध जताने के,
हाँ विरोध,
विधानसभा के पास कोई और अधिकार नहीं होता?
और अधिकार नहीं है जी।
विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर चंचल सिंह। उत्तराखंड में कई दलित छात्रों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 सालों से अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसके चलते या तो उनकी पढ़ाई छूटने की कगार पे है या फिर वो पढ़ाई के लिए उठाए कर्ज के कारण कर्ज में डूब गए हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहद पिछड़े इस वर्ग के छात्रों के लिए उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ओर से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजना चलाई जाती है। पिछले दिनों उत्तराखंड में इसके आवंटन को लेकर एक घोटाला सामने आया था, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों पर एक SIT जांच गठित भी की है। नैनीताल से एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
पिथौरागढ़ जिले के आगर हराली गांव की सपना टमटा के पिता पिछले 9 साल से लापता हैं और मां गांव में ही मजदूरी कर अपने 4 बच्चों की परवरिश करती हैं। अपने गांव से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ शहर के डिग्री कॉलेज में BSc में एडमिशन ले पाने तक के सफर में सपना को अनुसूचित जाति को सहायता देने की सरकारी नीतियों का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों से उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है और उनकी पढ़ाई छूटने की कगार पर है।
मैं BSc थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैंने जब मैं 12th में पढ़ती थी तब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तब भी किया और सेकंड ईयर में गई तब भी मैंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और मैंने अभी थर्ड ईयर में भी अप्लाई किया है। मैं आशा करूंगी कि वो स्कॉलरशिप आए क्योंकि मैं पढ़ाई स्कॉलरशिप के आज से ही करती हूँ। मेरे घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और अगर स्कॉलरशिप ना आए तो मैं शायद आगे को पढ़ने की सोच भी नहीं सकती हूँ।
सपना की तरह ही कई छात्रों ने छात्रवृत्ति मिल जाने की उम्मीद में परिचितों से कर्ज उठाकर किसी तरह अपनी पढ़ाई तो जारी रखी, लेकिन लगातार छात्रवृत्ति न मिल पाने से उनके सिर का यह कर्ज और बढ़ता जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के एक छात्र बेडन पाल की भी यही कहानी है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में रहकर SSG कैंपस अल्मोड़ा में योग विषय से MA कर रहे हैं।
किताबें नहीं हम खरीद पा रहे हैं, हमारी किताबें एक तो योग की बहुत महंगी किताबें होती हैं, प्लस जो है कि हमने किसी से पैसे ब्याज पे लेके किसी से मांगे अपनी फीस जमा कर रखी थी, हमारी योग की फीस भी काफी होती है। अब वो मेरे से पैसे मांग रखा है और मेरी स्कॉलरशिप अभी अब तक आई नहीं है कि मैं जो दे पाऊँ, जिसके कारण मेरा मानसिक संतुलन भी कभी कभी खराब हो जाया कर रहा है और यही सारी समस्याएं हैं।
हालांकि उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग का दावा है कि सत्र 2017-18 तक की सारी छात्रवृत्तियां बांटी जा चुकी हैं। विभाग के निदेशक विनोद गोस्वामी कहते हैं,
पहली बात तो ये कि सभी छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही है। 18-19 का जो 1,75,574 बच्चों को स्कॉलरशिप जो डिस्ट्रीब्यूट की जानी है उसकी प्रक्रिया इस समय चल रही है। इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट के स्तर से जो धनराशि है लगभग 74 करोड़ रुपीज ये आ चुकी है और हम लोगों ने इसको डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
जब विभाग छात्रवृत्तियां बांट चुका है तो पिछले 3 सालों से कई छात्रों को यह मिली क्यों नहीं? इसका जवाब देते हुए विनोद गोस्वामी कहते हैं,
2,41,000 में से लगभग 70,000 के आसपास एप्लीकेशन ऐसी थी जो या तो मानकों के अंतर्गत नहीं थे, उनके आय प्रमाण पत्र उस कैटेगरी के नहीं थे या उनके अन्य किसी प्रमाण पत्र में कोई न कोई ऐसी कमी थी जिसको बताने के बाद भी वो पूरा नहीं कर पाए, या ऐसा भी था कि उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपए की सबको स्कॉलरशिप मिल रही है उस आधार पर भर दिया था।
विभाग के मुताबिक अकेले मौजूदा सत्र में 81,010 आवेदन निर्धारित प्रारूप के मुताबिक नहीं होने से खारिज कर दिए गए, लेकिन अब भी छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद में पिछले 3 सालों से कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहे इन छात्रों को नहीं मालूम कि उनके आवेदन विभाग खारिज कर चुका है। कुछ छात्र आरोप लगा रहे हैं कि छात्रवृत्ति पाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसे ऑनलाइन कर उपेक्षित तबके के छात्रों के लिए और जटिल बना दिया गया है। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे किशोर कुमार कहते हैं,
मेरा घर जूनागढ़ है, जूनागढ़ के चारों तरफ पहाड़ से गिर रखे हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट काम करना से दूर की बात है, फोन में ढंग से बात तक नहीं होती है। अब वहाँ का बच्चा अप्लाई कैसे करेगा स्कॉलरशिप के लिए? वहाँ पर गरीबी इतनी है कि भाई उनके पास अपने खुद के मोबाइल नहीं होते या उनके पास ना लैपटॉप होगा कि वो कैसे अप्लाई अप्लाई करेगा वो।
प्रक्रियाओं के जटिल होने के अलावा पिछले दिनों उद्घाटित हुआ छात्रवृत्ति घोटाला भी जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाने की वजह रहा है। इसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों पर एक विशेष जांच दल गठित किया है। इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका की पैरवी कर रहे वकील चंद्रशेखर करगेती कहते हैं कि प्रभावशाली लोगों की मिल्कियत वाले निजी शिक्षण संस्थानों को लाभ पहुंचाने के लिए छात्रवृत्ति के आवंटन में जानबूझकर अनियमितताएं बरती गई।
स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि जैसे 100 रुपया अगर विभाग को स्कॉलरशिप का मिला है तो सबसे पहले जिले के जो इन डिस्ट्रिक्ट जो इंस्टीट्यूट है सरकारी उनमें बटना था। 100 रुपए में से फिर कुछ पैसा बच गया तो जो जिले की एडेड इंस्टीट्यूट थे उनको बटना था, फिर कुछ पैसा बच गया तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बटना था पैसा। लेकिन यहाँ पे गाइडलाइंस को बिल्कुल अनदेखा किया गया और वो पैसा सरकारी संस्थाओं को ना बटने के बजाय पहले इन्होंने बांट दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूट को।
इधर देहरादून के परेड ग्राउंड में छात्रवृत्ति से जुड़े इन मसलों पर उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के कार्यकर्ता 2 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। संगठन का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की लगातार अनदेखी की है। रोहित जोशी, BBC नैनीताल।
और अब वक्त है वर्षांत रिपोर्ट का। इस साल बॉलीवुड ने कई रंग देखे। एक तरफ हिट फिल्मों की बारिश हुई तो दूसरी तरफ हाई बजट फिल्में भी फ्लॉप हुई। कई कलाकार विवादों में भी फंसे। 2019 के बॉलीवुड फ्लैशबैक पर सुनिए सूर्यांशी पांडे की पेशकश।
सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से रात हो गया। सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से रात हो गया। 2019 का ये साल जाने वाले साल
को सलाम। I got my dream job and dream husband.
मैंने PhD join की, that was my dream.
Pretty good. I got recently married. I have my wife with me. Yeah. मेरे लिए तो कुछ खास नहीं रहा। I hope कि 2020 अच्छा हो।
साल best रहा इस अब की बार और देखते हैं नया साल क्या रहता है।
तो यूं ही नहीं बीत गया बल्कि बहुत कुछ किया आपने। शादियां वादियां, प्रमोशन शमोशन, क्या बात है। और अगर कुछ खास नहीं भी किया तो कुछ सीखा तो जरूर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हार्दिक पांड्या ने इस साल ये सीख लिया कि लड़कियों की इज्जत करना किसे कहते हैं। और कंगना ने बॉलीवुड को और जर्नलिस्ट को बहुत कुछ सिखा दिया।
अरे बड़े मियां का हाल तो देखो।
इशारों में मैंने आपको ये बता दिया है कि 2019 को बाय बाय कहने से पहले और 2020 को हाय कहने से पहले हाय 2019 की सारी कॉन्ट्रोवर्सी से मैं आपको मिलवाऊंगी, वो भी गर्मा गर्म तड़के के साथ।
ये तो हाइट्स है, हद ही पार होगी।
और हिट फिल्मों की भी होगी बहुत सारी बात। अब बॉक्स ऑफिस ट्रेड के अकॉर्डिंग तो वॉर सबसे टॉप पर है, उसके बाद कबीर सिंह, फिर उरी, फिर भारत, फिर मिशन मंगल, फिर हाउसफुल 4, फिर गली बॉय, फिर टोटल धमाल, फिर छिछोरे, फिर सुपर 30। यू नो पैसा बोलता है, लेकिन जनता क्या बोलती है। उसके लिए तो स्टूडियो से बाहर मैं गई और पता लगा कर आई। तो आइए। हेलो, आपका नाम क्या है? अरे अरे शर्मा क्यों रही आप, अरे बता तो दीजिए। चले कोई बात नहीं। ये अदा अभी तो बॉलीवुड से ही सीखी है हमने, शर्माना। चलिए आगे देखते हैं। ऑटो वाले भैया से पूछते हैं, भैया जी एक बात बताइए, ये इस साल कोई मूवी आपको पसंद आई? कोई भी नहीं?
ना ना, मेरे से पूछा ही नहीं।
भैया स्पीकर कितने का ये?
कौन सी मैम?
ये वाला जहाँ से गाने बज रहे हैं
ये 2700 रुपए के।
2700 रुपए का? भाई वो सब तो ठीक है, खरीदारी मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी अच्छी हो रही है। ये बताओ कि इस बार कौन सा जो फिल्म है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बता दे, शर्मा क्यों रहे हो? भैया क्या अभी बड़ी प्यारी सी शॉप है, स्पीकर बेचते हैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा यार जरा पूछे इनसे भी। आप ही बता दो, चलो आप बोलो कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी इस साल?
इस साल की मुझे लगी वो क्या पिक्चर का नाम है उसका, पानीपत। संजय दत्त विलन था इसलिए।
गॉगल्स अच्छे लगाए हुए। अच्छा ये बताओ कि इस बार फिल्म कौन सी अच्छी लगी?
देखने गया नहीं लेकिन अब दबंग 3 देखूंगा भाई कल जाके।
अच्छा
हाँ।
दबंग देखोगे आप? दबंग 3। आगे बढ़ते चलो यार, सबके सब बड़ी जल्दी में लग रहे, ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं क्या? कैसी रही ट्रैकिंग?
अच्छी थी।
अच्छा, तो अच्छा ये बताइए इस साल सबसे फेवरेट मूवी आपकी कौन सी रही?
फेवरेट
मूवी? ट्रैकिंग करने से टाइम ही नहीं है यार। सही कहा। यहाँ पर एक घुसे हुए अपने फोन में, जरा इन्हें डिस्टर्ब करते। हेलो हेलो मैं सोचा फ़ोन पे बात करें तो मैं भी हेलो ही कर दूँ शायद कोई आंसर आ जाए। अच्छा ये बताइए कि 2019 का जो साल था इसमें सबसे खूबसूरत मूवी आपको कौन सी लगी?
अभी लेटेस्ट जो आया था छिछोरे।
कौन सा छिछोरा अपने कॉलेज का याद आया?
माई फ्रेंड नयन, ही इज जस्ट लाइक सेक्सा।
तो नयन आपको टैग मिल चुका है। तो ये बताइए 2019 का साल अगर मूवीज़ की बात करें तो सबसे यादगार मूवी कौन सी रही?
बाला।
क्या नाम जी? ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, आप एकदम सही कह रहे हैं, बाला आयुष्मान खुराना की मूवी है।
दे अब चलते हैं ज़रा अपनी ऑफिस की तरफ और पहुँचते स्टूडियो।
और इस तरह से मैंने पता कि आपकी मन की बात, किसी ट्रेड एनालिस्ट की ज़रूरत क्या है? नहीं जरूरत है। आखिरकार ये हिट फिल्मों का फॉर्मूला बनाने वाले हैं कौन, ये पता कैसे चलता है? बॉलीवुड के फेमस ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श से अगर पूछा जाए कि ये बॉक्स ऑफिस है कौन सी बला।
मैं आपको एकदम सिंपल उदाहरण दूंगा, जैसे 100 रुपए की आपने टिकट खरीदी है, उसमें से 30-35 जो प्रतिशत है 33% या 35% डिपेंडिंग वो टैक्सेस में चले जाते हैं, बचते हैं 70 रुपीज। 70 रुपीज में से 35 रुपीज चले जाते हैं, वो जो 100 रुपीज आपने जो दिए हैं वो ग्रॉस इनकम है, पर जो 35 रुपीज कट गए इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, उसके बाद जो बचता है वो बचता है नेट रेवेन्यू, यानी कि 70 रुपीज। 70 रुपीज में डिवाइड हो जाता है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड द एग्जीबिटर। डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो फिल्म खरीदता है और एग्जीबिटर यानी जो फिल्म रिलीज करता है अपने सिनेमाघर में। तो इस हवाले से इसे नेट इनकम कहते हैं, और टैक्सेस कटने के बाद जो इनकम होती है उसे हम नेट इनकम कहा जाता है, बॉइल्स डाउन टू बॉक्स ऑफिस।
यानी कि आपका खरीदा हुआ एक एक टिकट आपके फेवरेट हीरो के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये अब आपको पता चल गया होगा, है ना? और मुझे ना अभी अचानक से ऐसी खुशबू की आ रही है कि खाना कहीं पर पक रहा है और वो बस एक छौंक का इंतजार कर रहा है जिसका नाम है बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज। बॉलीवुड बिना कंट्रोवर्सी के यार चाय कम पानी है। और साल 2019 की कंट्रोवर्सी की शुरुआत चाय से नहीं कॉफी से हुई थी, याद आया? केएल राहुल और हार्दिक पांड्या कॉफी पीने गए थे कॉफी विद करण में, लेकिन अपना मुंह जलाकर आ गए। हार्दिक पांड्या ने ना सिर्फ सेक्सिस्ट रिमार्क दिए थे बल्कि उनके कुछ रिमार्क्स की वजह से उनके साथ जुड़ी एक्ट्रेसेस के नाम भी डिमीन हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ था ईशा गुप्ता का नाम। और फ्लैशबैक में अगर जाएं तो ईशा गुप्ता ने इस कंट्रोवर्सी के बाद हार्दिक पांड्या को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
आई जस्ट डोंट थिंक एनीवन शुड बी अ मिसोजिनिस्ट एंड स्पीक इल अबाउट एनी वुमन, वेदर इवन इफ यू थिंक दैट योर पेरेंट्स हैव आर ओके विद इट, आई डोंट थिंक ह्यूमैनिटी इज ओके विद।
और करण जौहर के साथ कॉफी पीना इतना महंगा पड़ जाएगा केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को कि उनको खुद नहीं पता था। बीसीसीआई ने उनको सस्पेंड कर दिया था, उस समय ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ टूर्स होने थे, वहां से उन्हें वापस बुला लिया था, उन पर 20-20 लाख का फाइन भी चढ़ा। अब तक ये कंट्रोवर्सी ठंडी हुई नहीं थी कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जब मूवी आई तो अनुपम खेर इस पॉलिटिकल ड्रामा में फंस गए। ट्विटर पर इस फिल्म के रिलीज होने की डेट को लेकर, इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल उठने लगे। अनुपम खेर ने पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था और जिस तरह से इस किरदार को फिल्म में दर्शाया गया इस पर काफी बवाल हुआ, जिसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्में भी आईं, जैसे कि ताशकंद फाइल्स, पीएम नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक थी और उसके अंदर विवेक ओबेरॉय ने काम किया था, नॉट टू फॉरगेट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ठाकरे भी आई थी। और बॉलीवुड में पॉलिटिक्स का तड़का लग ही रहा था कि अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ही ले लिया।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक, मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी, तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं।
हाय मिर्चे, बुह बुह मिर्चे।
और कंट्रोवर्सी की गड्डी आगे बढ़ाए तो विवेक ओबेरॉय ने ऐश्वर्या राय से जुड़ा एक मीम शेयर कर दिया जिसके अंदर सलमान खान भी थे, विवेक ओबेरॉय भी थे और ऐश्वर्या राय थी। इस मीम को देखते ही सोनम कपूर भड़क गई और उन्होंने लिखा डिस्गस्टिंग क्लासलेस ट्विटर पर। और जहां विवेक और ऐश्वर्या तो वहां सल्लू भाई कैसे पीछे रह सकते हैं, लेकिन वो अपनी अलग कंट्रोवर्सी में फंस गए। सलमान खान भारत फिल्म को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे और चूंकि ये खबर आ गई थी कि भारत को पीसी यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने नो कह दिया है और उनकी जगह कैटरीना कैफ भारत फिल्म कर रही है, तो सलमान खान ने जहां मौका मिला वहां पीसी को सुनाते हुए दिखे।
As an actor, I think it's definitely my most incredible experience working with Ali. We've done three
Thank
films.
Thank you, Priyanka. Thank you, Priyanka.
और फिर आई कबीर सिंह की आंधी। फिल्म तो सुपर डुपर हिट रही, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खूब सारा किया, लेकिन खूब सारी गालियां भी खाई और शाहिद कपूर सफाई देते नजर आए।
वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, जिस तरह लोगों को फिल्में बनाने का हक है उसी तरह हर इंसान को फिल्म पे कमेंट करने का हक है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा दैट आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग ग्रेट एक्टर्स जिनका सबसे बड़ा एम ये नहीं था कि मैं कैसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ कि लोग मुझे बहुत ही अच्छी नज़र से देखें। वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स, नॉट वेल बिहेव्ड कैरेक्टर्स, हर तरह के कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और ये आंधी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी जायरा वसीम की खबर आई कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ रही हैं। ऐसा वो अपने रिलीजियस कारणों की वजह से कर रही हैं। ट्विटर यहाँ पर बटा हुआ नजर आया, आधे लोग जायरा वसीम के फेवर में थे तो आधे लोग उनके अगेंस्ट में थे। और इस साल ऋतिक रोशन रॉकेट की तरह अपने करियर को उड़ाते हुए दिखे और इसके लिए उन्होंने शुरुआत की सुपर 30 से, जो कि आनंद कुमार की बायोपिक थी, लेकिन बीच में कंगना रनौत ने खोटी डालने की कोशिश की। हुआ ये था कि सुपर 30 की रिलीज डेट 26th ऑफ जुलाई थी और उसके कुछ दिन बाद जजमेंटल है क्या कि रिलीज डेट भी 26th ऑफ जुलाई आई। तो फिर क्या, ऋतिक रोशन ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम अपनी रिलीज डेट पीछे कर लेते हैं जी, हम 12 जुलाई को ही रिलीज हो जाते हैं, आप लोग आराम से अपना रिलीज करिए। और कंगना रनौत तो कंगना रनौत है, जजमेंटल है क्या कि प्रमोशंस के दौरान एक जर्नलिस्ट से ही भिड़ गई।
जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार।
अरे नहीं,
बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो।
ऐसा है?
हाँ?
सच लिखता हूँ यार।
कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो?
Kangana, I don't think it's fair to say that.
No, but is it fair for you to write stuff like that?
Like what? Like what? Since you mentioned.
क्रिटिक्स के द्वारा मणिकर्णिका को मिली आलोचनाओं से भड़की कंगना रनौत जर्नलिस्ट पर भड़क गई और कहा कि आप उल्टा सीधा लिखते हैं। और जब बीबीसी ने उनसे इस पर सफाई मांगी तो उन्होंने ये कहा,
यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैंडिडनेस ऑफ दैट एनवायरनमेंट। और किसी को कहना कि यार तुम तो दुश्मनी हो गए हो, जब देखो अजीब सी बातें गंदी बातें लिखते रहते हो, इसमें क्या कोई गाली गलौच इन्वॉल्व है? इसमें क्या कोई वायलेंस इन्वॉल्व है?
और इस बार तो तापसी पन्नू को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। कंगना रनौत की बहन रंगोली तो उन्हें ट्रोल कर ही रही थी ट्विटर पर कि सांड की आंख जब फिल्म आई तो लोगों ने कहा कि जी ये ओल्ड एज तो दिख ही नहीं रही है। दो शूटर दादी की कहानी थी सांड की आंख, जिसके अंदर भूमि पेटनेकर और तापसी पन्नू को कास्ट किया गया। और आयुष्मान खुराना, जो कि कॉन्ट्रोवर्सीज और ट्रोलिंग से कोसों दूर रहते हैं, वो भी इस बार नहीं बच पाए। उजड़ा चमन और बाला के बीच जो क्लैश हुआ डेट्स को लेकर, उसमें आयुष्मान खुराना फंस गए। उजड़ा चमन रिलीज हो रही थी नवंबर 8 को और उन्होंने अपनी डेट पहले ही अनाउंस कर दी थी, जिसके बाद बाला ने डेट अपनी अनाउंस की नवंबर 7 को। तो उजड़ा चमन के डायरेक्टर अभिषेक पाठक को लगा कि ये तो चीटिंग है, हमसे पहले कैसे रिलीज कर देंगे। तो उन्होंने बाला के प्रोड्यूसर दिनेश विजान और डायरेक्टर अमर कौशिक को लीगल नोटिस दे डाला, जिसके बाद कुल मिलाकर ये हुआ कि उजड़ा चमन रिलीज हुई बाला से पहले नवंबर 1 को और बाला रिलीज हुई नवंबर 7 को। और मिशन मंगल का वो पोस्टर तो आपको याद ही होगा, जिसमें अक्षय कुमार सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, जबकि फिल्म की लीडिंग लेडीज कोने में दिख रही थी। विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन, कीर्ति, सब कोई साइड में थे और सबसे ऊपर खिलाड़ी।
हालांकि इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अक्षय कुमार ने नए पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट निकाली।
माफ कीजिएगा। तो इस साल की ये रही बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज, जो बॉलीवुड फिल्मों की सक्सेस के लिए शादी का वो लड्डू है जो खाए तो पचता है और ना खाए तो भी पचता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस साल जो भी हुआ उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ो। दुनिया का नारा,
रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। और कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। भारत प्रशासित कश्मीर में 31 दिसंबर आधी रात यानी कि नए साल की शुरुआत से टेक्स्ट मैसेज भेजने की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। हजारों इराकी लड़ाकों ने बगदाद में अमरीकी दूतावास पर हमला बोल दिया। ये हमला अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में किया गया। अमरीकी हमले में ईरान समर्थित 25 इराकी लड़ाके मारे गए थे। जापानी कार निर्माता कंपनी निसान के पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोन जमानत की शर्तें तोड़कर देश से बाहर चले गए हैं। बीबीसी समाचार।
2019 की आखिरी शाम का ये आखिरी प्रसारण था। अब आपसे मुलाकात नए साल में नए जोश के साथ होगी। कल साल के पहले दिन भर के साथ फिर उपस्थित होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आप सभी को नया साल मुबारक हो। नमस्कार।